श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडल दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
जो चिंतन है वह सार्थक है।
सत्संग भी हम करते हैं, सुनते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई तब्दीली ना हो, हमारा जीवन सुखी ना हो, तो फिर चिंतन का हमारे को भ्रम मात्र है, चिंतन नहीं है। क्योंकि चिंतन तो कम होता है, चिंता ज़्यादा होती है। हमारे जीवन में चिंता का आवेश ज़्यादा है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। जब तक हम चिंता ग्रस्त हैं तब तक चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन प्रायः हम चिंता में ग्रसित हैं इसलिए चिंतन नहीं हो पाता। हमारे को भ्रम रहता कि हम चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन में बैठे हुए ही हमारे अंदर चिंता है। मानो कहीं पूजा पाठ करने बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, तब भी बैठे यहाँ हैं शरीर करके, लेकिन चिंतन नहीं यहाँ का होता, चिंतन और कहीं का चलता है। तो एक समय में एक ही चिंतन होगा, या तो संसार का चिंतन होगा या फिर निरंकार का होगा। तो हमारा चिंतन जब तक संसार का चिंतन है तब तक निरंकार का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए निरंकार का, प्रभु का, परमात्मा का चिंतन अवश्य है। इसके लिए संसार की जो हमारी इच्छाएं हैं, जितनी तृष्णा हैं, उन सब का त्याग करना पड़ेगा। उनसे रहित होंगे तभी चिंतन होगा। तो पहले जो हमने विचार किया था दो मंत्रों का, उसमें यही बात बहुत विस्तार से बतलाई गई है। हमारे जीवन की मुख्य बातें तो उसमें बतला दी है दो मंत्रों में। यदि उन दो मंत्रों वाली मुख्य जो बात है उसको हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। चल तो रहे हैं, हम यात्रा में हैं, लेकिन मंजिल जो है उसका पहले ज्ञान होना चाहिए। यात्रा की सफलता मंजिल में पहुंचने पर है। ये ना हो कि यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन मंजिल भूल जाए कहाँ पहुंचना है, तो फिर भटक जाते हैं। पहुंचेंगे लेकिन बहुत देर बाद पहुंचेंगे, जब कहीं ख्याल आएगा कि कहाँ जाना था। इसलिए चिंतन प्रभु का, प्रभु पिता परमात्मा का चिंतन इस दो मंत्रों में हमारे को बतलाया गया था कि यदि आप ईश्वर दर्शन करें, सब के अंदर ईश्वर बुद्धि बनाए। हमारी बुद्धि तो बनी हुई है लेकिन संसारक बुद्धि है, इसलिए नहीं ना चिंतन हो पाता। करना कुछ नहीं है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, क्रिया की जरूरत है। क्रिया के बगैर, कर्म के बगैर कोई संसार की वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए विचार की जरूरत है। विचार होना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद विचार होना चाहिए। श्रवण हम कर रहे हैं, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, अब यहाँ विचार की जरूरत है। अविचार कृत ये बंधन है, अविवेक से बंधन है और विवेक के द्वारा इसकी निवृत्ति होगी। तो सर्वत्र ईश्वर दर्शन और भोग में त्याग और अर्थ में निर्लोभता, तीन बातें हमारे को दृढ़ करवाई गई थी पहले मंत्र में। मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया, उसके बाद काम का, उसके बाद अर्थ का, तीन पुरुषार्थ उसमें हमारे को बतलाए गए। इस मनुष्य जीवन की पूर्णता चार पुरुषार्थों की पूर्णता में है। चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, चारों का हमारे को प्राप्ति हो सकती है। जैसे आपने एक सुखमनी साहिब ने पंक्ति श्रवण की है कि चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार यही पदार्थ हैं, चार पुरुषार्थ जो है उन्हीं का नाम है, चार पदार्थ वही है। यदि चार पदार्थ किसी को चाहिए, चार पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन साधना की सेवा लागे तो कहाँ से मिल सकते हैं? साधु महात्मा के पास, उनकी शरण में, सन्निधि में जा करके उनकी सेवा। साधुओं की सेवा क्या है? कई बार शब्द तो हम सुन लेते हैं लेकिन समझने में बहुत अंतर रहता है। साधु महात्मा की सेवा कौन सी है? साधु महात्मा के पास जाकर के उनको किस चीज की जरूरत है? सेवा का अर्थ होता है ना, उनको कोई चीज चाहिए तो हम देंगे। तो जो संसार वृत्ति से ऊपर उठ गए हैं महात्मा जन तत्ववेत्ता लोग, उनको संसार का कोई सेवा की जरूरत नहीं होती, वो उससे अलग होते हैं। वो उनकी प्रारब्ध उनको मिलती है, हम कुछ देते नहीं है, लेकिन हमारे को लगता है कि हम उस महात्माओं की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा ये होती है कि जो उनके पास जाकर के उनसे हमने श्रवण किया है उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये उनकी सेवा होती है। उस दिन भी हमने कहा था सेवा का दो अर्थ है, हाथों से सेवा करना और हृदय से चिंतन करना, सेवन करना। तो चार पदार्थ मिल सकते हैं साधु महात्मा की शरण में जा करके, उनके द्वारा जो सदुपदेश है उसको ग्रहण करके उसका सेवन करेंगे। सेवन का अर्थ खाना भी होता है, ये भी आपने कहते हैं ना, दवाई का आपने सेवन नहीं किया, सेवन का मतलब वहाँ क्या होता है, दवाई आपने खाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हम सदुपदेश ग्रहण किया है उसका सेवन करने का अर्थ क्या होगा? अक्षरों का दर्शन करना थोड़ी होता है, मानो अक्षरों का हमने दर्शन कर लिया, गौर मंत्र हमारे को मिला है तो उसका हमने कान से श्रवण किया और उसको बोल के हम रटते हैं उसको, ये तो सेवन ना हुआ। मानो किसी दवाई को हमने लिया तो हर रोज दवाई का हम नाम लेकर के चिंतन अंदर डांटते रहें तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो डॉक्टर तो कहता दवाई का सेवन कीजिए परहेज से, तो सेवन का अर्थ फिर क्या होगा? उसको खाएंगे ना, और नियम के साथ खाएंगे। तो इसका मतलब जो हमने सदुपदेश ग्रहण यहाँ से करते हैं उसको सेवन का मतलब कानों से सुन लिया, बोलते रहेंगे हर रोज, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, यही हुआ ना। जब तक हम सेवन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो यही बोलेंगे ना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। तो जैसे हम कहते रहें कि अमुक दवाई है मेरे पास, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो कभी ठीक होंगे? कभी भी नहीं होंगे। पूछत है वैद खात औषध न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। ये एक वचन है भाई गुरुदास जी का कि पूछत है वैद, वैद से पूछता है जा करके, वैद्य को दिखा करके पूछ लेता है रोगी, खात औषध न संजम से, औषधि जो दी है वैद्य ने उसको संजम से खाता नहीं है, तो कैसे मिटे रोग, मानो उसका रोग कैसे निवृत्त होगा? तो सेवन का अर्थ नहीं समझ पाते हम लोग। जैसे हम और चीज को रटते रहते हैं ना, उसी प्रकार ये जो वेदांत हम सुन लेते हैं ना, उसको रटेंगे यदि बैठ के कि मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, तो इससे हम कभी भी भ्रम नहीं हो सकते। यदि दवाई का सेवन ना करने से, बिना खाने से नाम लेकर के कोई ठीक नहीं हो सकता। अग्नि शब्द आपने श्रवण किया है, आपको ठंडी लग रही तो आप अग्नि अग्नि बोलते रहो, ठंडी थोड़ा दूर होगी। आपको अग्नि का अर्थ पता होना चाहिए, अग्नि का अर्थ क्या, अग्नि तो शब्द है ना, तो उसका अर्थ क्या है? जो जलते हुए अंगार हैं वो उसका अर्थ है, तो आपको उस अर्थ के पास जाना पड़ेगा ना, तभी आपकी ठंडी दूर होगी ना। अग्नि अग्नि कहने से तो नहीं होगी ना, चीनी चीनी बोलते जाए तो आपके अंदर जो है रसना पे मीठा स्वाद नहीं आएगा, उसका अर्थ आपको चाहिए। चीनी तो शब्द है, तो शब्द से तो कुछ नहीं हुआ, चीनी बोलने से आपके अंदर मीठा स्वाद कहाँ आया? अर्थ उसका जो है उसको आपको मुख में डालना पड़ेगा, तभी आपको स्वाद आएगा ना। तो उसी प्रकार जो चिंतन की धारा है उसको समझना है ना, ज्यादा श्रवण करने से, बहुत पुस्तकें पढ़ने या सुनने से थोड़ी होता है, वो तो हमारा उद्धार तो गुरु मंत्र से ही हो सकता है। गुरु तो यही बतलाते हैं, तत्त्वमसि, इतना बोल दिया गुरु जी ने, तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, इतनी तो बात बोली। तो उसको हम चिंतन करना जब समझ जाएंगे तो उसी से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि शब्द रटने से कोई ब्रह्म नहीं होता है, शब्द से ब्रह्म कभी नहीं होता, शब्द के अर्थ का चिंतन करने से ब्रह्म होता है। तो ये जो शब्द हमारे को श्रवण पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, जैसे बोला कि आप सर्वत्र ईश्वर दर्शन करो, ईशावास्य मिथुन सर्वम, ये बोल दिया तो हर रोज बोलेंगे कि ये संसार जो है ईश्वरमय है, तो ऐसे ईश्वर रूप हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। ईश्वरमय उसको कैसे समझना है, हमारी दृष्टि, हमारी मानसिकता को बदलना है। अर्थ क्या है ईशावास्य मिथुन सर्वम का, उसका अर्थ यह है कि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, हमारी मानसिकता, हमारे संस्कार बदल जाए। होता कुछ नहीं है, मानो कोई आदमी शराब पीता है या मांस खाता है, तो जब उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, आप कितना भी उसको बोलते रहो नहीं छोड़ेगा, कितना भी बोलते रहो छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस दिन उसकी मानसिकता बदल गई, संस्कार बदल गया, आपको कहना नहीं पड़ेगा। कि देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा संसार में कि जो हमारी बुरी आदतें होती है उसको छुड़ाने के लिए कि कितना भी कहता रहे, थोड़ा बहुत असर होता है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है, फिर हम वहीं आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी मानसिकता बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं, तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ता, फिर हम स्वयं कहते हैं कि मालूम नहीं चला कैसे हो गया ये काम, ये तो हम अनुभव करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को उसी दिन दृष्टि बदलते ही हमारा वो, हमारे को जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। दृष्टि नहीं बदल रही, दृष्टि ही सृष्टि है ना, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमारे को सामने, हमारे सामने आकार आ जाता है। इसलिए इसका चिंतन करने का मतलब है कि वेदांत के शब्द श्रवण करने करने तो पड़ेंगे, श्रवण ये भी बात नहीं है, श्रवण तो पहले करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका मनन का मतलब क्या, श्रवण का अर्थ भी नहीं हमारे को मालूम। जो कानों में शब्द सुनाई पड़ रहा है ये भी श्रवण है, ये भी श्रवण है, लेकिन जो इसका वेदांत का या इन शब्दों का जिस अर्थ में तात्पर्य है, उस तात्पर्य का मतलब अर्थ जो है निश्चित करना श्रवण है, ये भी श्रवण है जो कान में पड़ रहा है। लेकिन जो जीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य है वेदांत के वाक्यों का, उस अर्थ का निश्चय करना ही असली श्रवण है। तो ये हम चिंतन इस बात का करना है कि हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं कि जो इसके तात्पर्य है उसका निश्चय हमारे को हो रहा है। जब ऐसा हो जाएगा श्रवण, तो फिर आगे की सीढ़ी मिलेगी मनन। तो मनन का अर्थ क्या है, जो हमने श्रवण करके अर्थ का निश्चय किया है ना, निश्चय जीव ब्रह्म की एकता का, उसको युक्ति से पक्का करना, अभ्यास करना उसका युक्तियों के द्वारा, ये मनन है। तो जब हमने श्रवण मनन किया तो उसके बाद निधिध्यासन तीसरी कोटि है। तो जो हमने श्रवण और मनन से अर्थ हमारे अंदर परिपक्व हुआ है, उस अर्थ में अपनी वृत्ति को तेल धारावत टिका करके रखना, उस अर्थ से हमारी वृत्ति इधर उधर ना जाए, ये है निधिध्यासन। तो इस प्रकार चिंतन होता है, निधिध्यासन जो है तीन चीजें हैं, इसी से जो पहले प्रतिबंध बतलाए थे ना, इन तीनों से वो हटते हैं, विषयाशक्ति, प्रमाण, प्रमाण में संशय, प्रमेय में संशय, ये भ्रम भ्रांति वो इसी से हटते हैं, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से। तो जब हम ये करेंगे उसके बाद हमारे को जिज्ञासा होती है, ऐसा नहीं है। जो साधन चतुष्ट संपन्न होता है उसके बाद वो श्रवण का अधिकारी होता है, ऐसा कहते हैं कि जिसके पास साधन चतुष्ट हैं, जिसके अंदर साधन चतुष्ट आ गए हैं, वो केवल श्रवण का ज्ञान वेदांत श्रवण का अधिकारी बनता है। तो कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे में योग्यता होनी चाहिए ना उसकी, तभी उसकी पूर्णता होती है। तो मानो श्रवण हम करना है वेदांत का, तो पहले ये नियम है, और नियम हमने कहीं भी किसी ऑफिस में कहीं भी प्रवेश करना एंट्री करनी है तो उसके नियम पालन करने पड़ते हैं ना हमारे को, नहीं तो हमारे को एंट्री नहीं मिलती। तो जब तक एंट्री नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा। तो ये एंट्री है इसकी कि साधन चतुष्टय संपन्न जो है वो अधिकारी होता है वेदांत के श्रवण का। तो पहले हमारे एंट्री के नियम तो हमारे पास हों प्रवेश करने के लिए। जब हमारे वो पास सभी वस्तुएं हैं तो तब हम प्रवेश कर सकते हैं। जब प्रवेश करेंगे तब कहीं जा करके उसके रहस्य का पता चलता है कि ये अंदर कौन सा काम कैसे होता है। तो वेदांत तो हम श्रवण कर रहे हैं लेकिन उनको साथ में साधन जुटने चाहिए ना, वेद विवेक वैराग्य खड़ संपत्ति मुमुक्षता होनी चाहिए। जब ये आ जाएंगे ना, इनमें से एक भी आ जाएगा यदि, तो बाकी तीनों आ जाते हैं। एक भी आ जाए, एक भी चारों में से आ जाए तो हम श्रवण में प्रवेश कर सकते हैं। आगे तो मनन निधि ध्यान बाद की बात है, श्रवण के लिए ये चाहिए चार। तो हम ये चिंतन हर रोज बैठ के करना चाहिए, शुरुआत से जब चलेंगे तभी आगे जाना होता है। पहले भी हमने बताया था जो वेदांत सम्मेलन में बातें होती है ना, वहाँ प्रक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया की एक भी बात वहाँ आपको नहीं बतलाई जाएगी। प्रक्रिया तो हमने पहले श्रवण करके, पहले हमने धारण करके तब वहाँ बैठना है, वो तो बड़े वाली क्लास है ना। इसलिए वेदांत सम्मेलन हम सुनते हैं तब भी हमारा जीवन में अंतर नहीं आता, क्योंकि प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। क्लास एमए की है, हम पहली मतलब कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो कैसे श्रवण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे उसको। लेकिन हर साल ऐसा ना हो, जय हो गया पीछे जो बात अलग है, लेकिन सोचना चाहिए कि इस बार की क्लास से पहले हम तैयार होने चाहिए। विद्यार्थी तभी उस क्लास में प्रवेश कर सकता है जब उसके पास योग्यताएं होती हैं। तो ये कर रहे थे बात कि सेवन की बात है, सेवन चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा लागे, फिर जे को अपना दुख मिटावे। आगे वाली और बात है, कोई और शिष्य है उसने ये प्रश्न किया। एक शिष्य ने प्रश्न किया कि मेरे को चार पुरुषार्थ कैसे मिल सकते हैं, तो उसको उत्तर दिया महाराज जी ने कि साधु महात्माओं की शरण में जाकर के उनकी सेवा, उनके आदेश अनुसार सेवन करो। दूसरा कहता है कि ये संसार में कष्ट बहुत है, कष्टों की निवृत्ति कैसे हो सकती है। तो महाराज जी ने हर हर नाम हृदय सदगा है। और बात ये है कि मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्य रास। कोई भी कार्य हो उसका, संसार के कार्य भी और जो उसका मुख्य कार्य है कौन सा, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न कहा। जो दूसरे कार्य हैं संसार के, वो कहते संसार में तो तेरा उससे स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, लेकिन संसार की वस्तुओं की प्राप्ति इष्णा की प्राप्ति के लिए वो कार्य ठीक हैं, लेकिन तेरे कितै न कहा। तेरा जो पुरुषार्थ जड़ मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति का कार्य है ना, उसके लिए नहीं है होगा। तो जिसको चाहिए प्रभु पिता परमात्मा से मिलना है उसका ये मुख्य कार्य है, तो वो क्या करे, मन बेचे सतगुरु के पास। सतगुरु के पास जाना है ना, पहले भी शुरू में बतलाया था, वेद भगवान कहते हैं कि यदि आपको तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व पदार्थ की इच्छा है तो क्या करोगे, कौन सा उपाय है। तो तत्व ज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत, ये वेद भगवान कहते हैं। तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु मेवा विगच्छे, गुरु सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी आपको तत्व जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है। समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु तो उनके पास जाएंगे, उनके पास जाने की तो मर्यादा है ना। मानो हमने दुकान से कोई चीज़ खरीदनी है तो आप दुकान पे चले जाइए और कहिए कि मेरे को इतना वस्त्र चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, तो कोई देगा? कभी भी नहीं देगा। तो जब गुरु के पास आपको संसारी चीज़ लेने नहीं जा रहे हैं, जब संसार की वस्तुएं आपको बिना पैसे के नहीं मिल रही, तो जो तत्व जिज्ञासा की पूर्ति है, आपको आत्मस्वरूप चाहिए, आत्मस्वरूप की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपको देना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए ये नहीं कहते हैं कि आपको धन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी आदमी जा सकता है, क्योंकि जिसको संसार की वस्तुएं लेनी उसको तो पैसा चाहिए, गरीब आदमी को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नियम नहीं है, यहाँ कहते हैं आपको धन पदार्थ देने की जरूरत नहीं है, केवल मन बेचे सतगुरु के पास, मन देना है आपने केवल। तो मन तो सबके पास है कि नहीं? मान लिया धन किसी के पास नहीं है, कोई गरीब आदमी है, वो धन दे के सब कुछ नहीं खरीद सकता। मन के बगैर तो कोई संसार में आदमी नहीं ना है, सबके पास मन है कि नहीं? इसका मतलब इतना बड़ा पदार्थ जिसको पाने के बाद कोई पाना शेष नहीं रहता, उसको खरीदने के लिए सभी अधिकारी हैं, टोटल जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मन सबके पास है ना। तो यदि मन देकर के आपको इतना बड़ा पदार्थ मिलता है, तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? नहीं ना हो सकता। मन सबके पास है, लेकिन हम संसार का धन दे करके वस्तु में खरीद सकते हैं? मन नहीं दे सकते किसी को, मन देने की हमारी क्षमता ही नहीं, हम चाहते नहीं किसी को मन देना, मन अपने पास रखते हैं। तो एक बात और कहते हैं गुरु महाराज जी सुखमनी में, सुनते रहते हैं ना इसलिए उसकी बातें बतलाते हैं कि प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, उन्होंने एक ही बात आपसे, एक ही वस्तु आपसे मांगी है कि मन हमारे को दे दो। अष्टावक्र जी ने क्या कहा था राजा जनक को? यही तो कहा था ना, उन्होंने कहा मेरे को ऐसा गुरु चाहिए जो घोड़े की रिकाब में पांव रखूं तो मेरे को ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? कहते मेरे को मान दे दो बस, उतने में ज्ञान कराएंगे आप। माने तो मांगा था, उन्होंने कोई धन पदार्थ थोड़ी मांगा था। तो उन्होंने क्या कहा था? तुरंत कहा ठीक है दिया, तथास्तु। मान दे दिया तो उनको ज्ञान उसी समय हो गया था कि नहीं हुआ? कितने पंडितों को उन्होंने बांध रखा था, ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मान देते ही ज्ञान हो गया। जब मान दे देते हैं तुरंत ज्ञान हो जाता है, जब मन अपने पास रखते हैं, एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूढ़ा कहो कहाँ करे, कहते हैं एक भी ना दे, एक भी तुम देते नहीं हो, दस इंद्रिय आपको दिए हैं कि पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय, ये भी अर्थ है उसका। आपको कहा कि एक मन हमारे को दे दो, बाकी आप उसका उपयोग करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो ही नहीं देना चाहते, एक भी ना दे, आप एक भी देना नहीं चाहते, या इन दस इंद्रियों का अहम दे दो हमारे को, वही बात है अंतःकरण, वो भी नहीं आप देना चाहते। तो कहते यदि आप ये भी नहीं देना चाहते, दस भी हिर ले, आपके दस के दस ही यदि छीन ले तब तो बूढ़ा को कहाँ करे, तब बताओ क्या करोगे? यदि आप नहीं देना चाहोगे तो जबरदस्ती छीना जाएगा ना, जब आपकी प्रारब्ध खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? जबरदस्ती छीन लेंगे आपसे, फिर तो कुछ नहीं आपके हाथ में बचेगा। तो इसलिए वहां पर कहा है कि मन बेचे सतगुरु के पास, केवल मन देना है आपको। ये जो सौदा यहाँ आप खरीदने आए हैं, इसके लिए आपको धन वस्तु कोई नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बात कर रहा था वहां पर आना कि कि चार पदार्थ यदि किसी को चाहिए तो संतों की सेवा, चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा, तो साधुओं की सेवा कौन सी हुई, क्या मांगते हैं आपसे वो, उनको किस चीज की जरूरत है, आपसे कौन सी अपेक्षा है, मान दे दो उनको बस। आप उनके पास ज्ञान लेने जाएंगे तब, यदि संसार की वस्तुएं लेने जाएंगे तब नहीं। यदि आप तत्व जिज्ञासा से उनके पास जा रहे हैं ना, तत्व ज्ञानार्थम सा गुरु मेवा भी गच्छेत, गुरु के पास जाए तो गुरु को क्या चाहिए आपसे, मान दे दो उनको बस, तो आपके सब कार्य रास हो जाएंगे। हम कहते हैं सभी कुछ गुरु जी ले लो, लेकिन मान नहीं देंगे आप, क्योंकि मानसिक हम अपनी मर्जी करनी है ना। यदि मानव आपको दे दिया तब तो हमारा स्वत्व समाप्त हो जाएगा। उनकी बात जो उन्होंने बोली है वो फिर उसके सुनने के बाद हम अपने मन से द्वारा सोचते हैं कि ये सही है कि नहीं है। मन तो उनको दिया नहीं, मन तो हमारे पास है, तो संतों की सेवा कैसे करेंगे हम। सेवा का मतलब होता है उनको जो जरूरत है वो दे दो, तो गुरु तो यही कहते हैं ना, अपना अहम हमारे को दे दो, मन दे दो हमारे को, वो हम देना नहीं चाहते। तो बिन दम के सौदा नहीं हाथ, बिना दामन के बिना दमड़े के सौदा नहीं मिलता, हड्डी से कभी भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि अपना मान उनको दो, यही सेवन है साधु महात्मा की, सेवा यही है कि जो आपसे वो लेना चाहते हैं वो दे दो उनको, वो आपका अहम समाप्त करना चाहते हैं, आपकी मन के जो संकल्प रूप सृष्टि है ना उसकी समाप्ति करना चाहते हैं। कि संसार आपको कष्ट तब दे रहा है क्योंकि संसार वास्तव में है नहीं, हमारे मन का संकल्प है ना ये सृष्टि। तो वो कहते हैं कि जिसके द्वारा ये सृष्टि आपको दिखाई पड़ती वही हमारे को दे दो, जब मानव को दे देंगे तो हमारा कार्य रास हो जाएगा। तो इसलिए कल भी एक पंक्ति हमने आपको सुनाई थी कि छोटे मोटे की बात नहीं कही, कहते हैं कि संपादक नारद मुन सिखा तेरे भी तन में मन नहीं देखा, ये बात कही है कि बड़े बड़े जो संपादक नारद वर्गे जो ऋषि मुनि लोग हैं तेरे भी तन में मन नहीं देखा, ये नहीं कि उनकी निंदा नहीं है, इसमें निंदा नहीं है उनकी, ये अर्थवाद है, अर्थवाद, इसको अर्थवाद बोलते हैं। तो इसलिए सेवन की जो धारा है उसको हमने पहले सीखना है कि सेवन कैसे करना है, जैसे दवाई को खाना पड़ता है ना रोग को मिटाने के लिए, इसी प्रकार ये जो वेदांत के शब्द हम श्रवण करते हैं कि शब्दों का श्रवण तो जरूरी है लेकिन चिंतन हमने कैसे करना है, चिंतन होता है अर्थ के द्वारा, शब्द से चिंतन नहीं होता है। ऐसे हम जो पाठ करते हैं पूजा करते हैं उसका भी यही है कि केवल पाठ तक सीमित रहेंगे तो नहीं होगा, अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। तो अर्थ का जब अर्थ से जुड़ेंगे तो अवश्य हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो हमने बातें ये तीन बातें पहले श्लोक में से श्रवण की कि सर्वत्र ईश्वर दृष्टि, और दूसरा भोग में त्याग, और तीसरा अर्थ में निर्लोभता, तीन बातें हमने श्रवण की है, श्रवण कान से। अब इसके अर्थ का चिंतन करना है, हमने अर्थ से जुड़ना है, केवल शब्द से नहीं जुड़ना है। सर्वत्र ईश्वर दर्शन करने का मतलब अपनी दृष्टि को बदलना, अपने संस्कारों को बदलना, दृष्टि बदलना, तभी सर्वत्र दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और वो तब हो सकते हैं जब हम देह अध्यास से दूर होते हैं। सर्वत्र दर्शन तो अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन किसका दर्शन कर रहे हैं, अब अर्थ से कैसे जुड़ेंगे। बात तो ये है कि ईशावास्यम इदं सर्वं जगत्किं जगत्याम जगत, इस जो ये जो पंक्ति है इसके अर्थ के साथ हम कैसे जुड़ेंगे। अर्थ के साथ जुड़ने के लिए है कि अर्थ इसका ये है कि सारा संसार ईश्वर है, तो ईश्वर कैसे है, ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि ईश्वर कैसा है, पहचान करनी पड़ेगी ना कि वो कैसा है, असंग है, निर्लेप है, अजन्मा है, अजनी है, अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है, ये ईश्वर है ना, ईश्वर का स्वरूप है ना, सत्यत आनंद स्वरूप है ईश्वर। तो जब सत्यत आनंद स्वरूप ईश्वर का स्वरूप हम समझेंगे, ये अर्थ हमने चिंतन किया ना ईश्वर शब्द का, ईशावास्यम, ईशा का अर्थ है ईश्वर। तो उस ईश्वर से जो व्याप्त है संसार, तो ईश्वर का, ईशा शब्द का अर्थ परमात्मा ईश्वर। तो ईश्वर का स्वरूप क्या हुआ, सत्यत आनंद अस्थि भाति प्रिय, ये उसका अर्थ हुआ ना। अब हमने अर्थ के साथ जुड़ना है ना, तभी हमारी ईश्वर वय सृष्टि दृष्टि होगी ना। तो ईश्वर का स्वरूप है सत्यत आनंद अपरिचिन्न अपरिणामी अचल। अब इस अर्थ को जब हम चिंतन करेंगे समझेंगे, तब आप संसार को देखो, तो ये जो संसार दिखाई पड़ता है ये सत्यत आनंद है, तभी अर्थ का चिंतन होगा। ईश्वर में सृष्टि हमने दृष्टि बनानी है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करने हैं, पहले पहला काम हो रहा तब आगे चलेंगे ना। पूरी उपनिषद बांट देंगे, हम ही बांट के चले जाएंगे, आपके श्रवण करके चले जाएंगे। यदि हमारे को पहली बात ही घट जाए तो आगे रास्ता मिल जाएगा। ईश्वर दर्शन करना है, ईश्वर का स्वरूप हमने समझ लिया, सुन लिया, अब उसका अध्याय अपने जीवन में उसको उतारना कैसे है? कि ये संसार जो है ये आपको सचित आनंद रूप दिखाई पड़ता है, इसमें से सत्यता कहाँ है, चित्तता कहाँ है, आनंदता कहाँ है? कोई भी संसार की वस्तु आप ले लो, ये शरीर है, ये शरीर जो आपका स्थूल शरीर है, ये आपको सचित आनंद रूप दिखाई पड़ता है। सत तो समझ में आ जाता है कि शरीर मेरा है, इतना तो समझ में आता है शरीर है, और चित्त भी थोड़ा थोड़ा सबके अनुभव में आता है कि ये यदि है तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो तीसरा आनंद है ना, वो सबको दिखाई नहीं पड़ता, हमारे जीवन में नहीं घटता है। ये शरीर जो है आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, सत स्वरूप भी दिखाई नहीं पड़ता। सत स्वरूप होता तो नष्ट नहीं होता। यहां से शुरू करना है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर मैं, ईश्वर दर्शन पहले इसमें हो तब तो संसार में होगा। तो ईश्वर का स्वरूप सत्यत आनंद है, तो आप देखिए भाई ये शरीर सत्य है। अब सत्य जब पहला है ईश्वर का, जो ईश्वर में अंश है सत अंश है, तो सत का अर्थ क्या हुआ? हर शब्द के अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा ना। जब सत्यत आनंदमय ईश्वर है तो सत क्या है? सत भी एक शब्द है ना, सा और ता, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है जो तीनों कालों में नाश नहीं होता, त्रय काल अबाधत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में नाश नहीं होता वो सत्य है। तो जब हमने इस शरीर में सत्यता देखनी है तो कैसे कहेंगे? सत्य का अर्थ हमने समझ दिया कि जो तीनों कालों में नष्ट नहीं होता, तो इस शरीर को देखिए, इसमें वो अर्थ घटता है। जब ये पैदा नहीं हुआ था, भूतकाल में जो शरीर था, नहीं था, भविष्य में रहेगा, नहीं रहेगा, जब इसकी प्रारब्ध समाप्त हो जाएगी तो नहीं रहेगा। इसका मतलब जब तीनों कालों में नहीं रहा, जब तीनों कालों में ये नहीं है तो सत्य कैसे हुआ? सत्य नहीं हुआ। तो इसमें ईश्वर दर्शन कैसे होंगे? संसार में भी ऐसी दृष्टि बनानी है ना कि संसार जो है ये सत्य है, यदि सत्य होता तो इसको नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन नष्ट होता है, और पहले भी नहीं था, जब सृष्टि बनी से पहले था नहीं ये, तो इसका मतलब इसमें सत्यता नहीं है संसार में। जब सत्यता नहीं है तो ये दिखाई पड़ता है जो ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमने ईश्वर दृष्टि करनी है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करने हैं, आगे जा रहे थे लेकिन पीछे को फिर आना पड़ रहा है, ये आगे जाने को मन नहीं करता, इसलिए कि ये बात यदि घट जाए तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाएगा। ये संसार जो दिखाई पड़ता है, जब ये सत्य नहीं है तो फिर मानो ये ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर होता तो ये तीनों कालों में रहता, क्योंकि ईश्वर का मतलब सत्य है, तो ये सत्य नहीं है। और दूसरा चेत, चेत मतलब चेतन, तो चेतनता इसमें कहाँ है? ये जो संसार मानो शरीर पर ही आ जाए, शरीर में चेतनता दिखाई पड़ती है आपको, चेतन का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान सुनिए। और ये जो शरीर है ये तो अपने आप को भी नहीं जानता, तो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगा? ये शरीर अपने आप को भी नहीं जानता, ये चेतन कहाँ हुआ? इसमें चेतनता कहाँ हुई? मानो मुर्दे का शरीर है, तो मुर्दे के शरीर में चेतनता है नहीं ना? चेतनता अब वो चेष्टा नहीं कर रहा, चेतन होता तो चेष्टा करता, शरीर तो वो भी है हमारे शरीर जैसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता उसमें हमारे स्वरूप की थी, उसमें नहीं है। जड़ पदार्थ संसार में और देख लो, उसमें चेतनता नहीं है, तो इसका मतलब चेतन भी नहीं हुआ। जब सत्य चेतन नहीं है तो अनंत तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर हमारे को सुख देता है, हर हर वक्त देता है सुख। इस शरीर को देख करके हम हर समय सुखी रहते हैं, कभी भी नहीं रहते। थोड़ी सी भी इसमें कोई आँच आती है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं? तो आनंद का क्या मतलब होगा? एक रस रहने वाला आनंद की राशि है केवल ये। इसको हमारे को देख करके कहाँ आनंद आता है? शरीर को लेकर के हम दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं मैं शरीर से दुखी हूँ, शरीर को लेकर के मैं दुखी हूँ। तो जब इस शरीर से हम दुखी हैं तो संसार के शरीर भी तो ऐसे ही हैं, उसमें से आनंद कैसे आएगा? और बतलाया भी था आपको कि एक ही मानो एक शरीर की बात है, आज इस शरीर से हम सुखी हैं कल को दुखी हैं। इसी प्रकार संसार के जितने आपको शरीर दिखाई पड़ते हैं, व्यक्ति है, स्थान है, उसमें किसी कहीं भी आनंद नहीं है। आनंद आनंद सबको कहे, सारे लोग कहते हैं बहुत आनंद है हमारे को, लेकिन कहने मात्र से आनंदित हैं क्या? कह देंगे कि बहुत आनंद है, थोड़ा सा उनसे विस्तार से पूछो फिर बताते हैं कि कितना आनंद है। पहले तो कहेंगे दूर से तो कैसे है भाई, ठीक है बहुत आनंद है, थोड़ा सा विस्तार से पूछिए आप कि काम कैसे चलता है, तब आनंद की परिभाषा आपको बतलाते हैं कि कैसे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आनंद है नहीं है, आनंद की भ्रांति है, आनंद नहीं है। तो सचित आनंद ईश्वर का स्वरूप है, तो फिर संसार में सचित आनंद कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब जो दिखाई पड़ रहा है ये सचित आनंद नहीं है। जब हमारे को सचित आनंद दिखाई नहीं पड़ता तो ये संसार ईश्वर है ये कैसे अनुभव करेंगे? ईश्वर का स्वरूप हमारे को इसमें मिले कहीं, तब तो हम ईश्वर माने इसको, स्वरूप तो मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब जो दिखाई पड़ रहा है इसमें सचित आनंदता नहीं है। पहले भी हमने एक श्रुति आपको सुनाई थी, श्रुति कहती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म का भी ये स्वरूप है, सचित आनंद है, असंग है, निर्लेप है, अजन्मा है, अजोनी है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। ये तो आयमानी भूतानि जायन्ते जेन्द्यातानि जीवन्ति, ये भी कहती है श्रुति, वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी श्रुति कहती है, ब्रह्म का स्वरूप बतला रही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जैसा स्वरूप हमारे को वेद भगवान बतला रहे हैं ब्रह्म का, और इस संसार को कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो फिर क्यों नहीं ब्रह्म हमारे को दिखाई पड़ता? हमने सुन भी लिया, उसके अर्थ को चिंतन कर लिया, लेकिन यहां दिखाई नहीं पड़ता, वो अर्थ घट नहीं रहा इसमें। तो इसका मतलब है कि अब हमारी दृष्टि कैसे ईश्वरमय होगी, ब्रह्ममय हमारी दृष्टि कैसे होगी, सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन कैसे होंगे, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं। आपको किसी ने पानी दे दिया तो कहेंगे कि मीठा पानी है, तो जब आपने पानी पिया तो पानी में मीठा नहीं था, आपने कहा मीठा तो इसमें कहीं नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? वो तो कह रहा है नहीं मैंने मीठा बनाया है, चाय कभी कभी आपको देते हैं तो मीठा कम डाल देते हैं ना, तो आप कहते हैं मीठा इसमें कहाँ है। इसका मतलब जो आपके अंदर दृष्टि बन गई भी ये मीठी चाय है, लेकिन आप उसमें मीठे के दर्शन नहीं हो रहे। किसी भी बात पर चिंतन करके देख लेंगे ना, अंदर तो संस्कार बन गए, वृत्ति बन गई आपकी कि ये मीठा पानी है जो मैं पी रहा हूँ, लेकिन बाद में आप कहते इसमें मीठा है नहीं कहीं। इसका मतलब अंदर वाली दृष्टि बढ़ने के बाद भी बाहर आपको उस दृष्टि वाला स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा ना, तो आप उसको मानते नहीं है कि ये मीठा है। कोई कहता रहे कि मीठा है तब भी आप नहीं मानते, कहते नहीं, क्योंकि आपको अनुभव नहीं ना हो रहा मीठे का। तो जब हमारे को बतला दिया गुरु लोगों ने कि ये सत्यत आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है सारा संसार, लेकिन आपको घट नहीं रहा ना, तो फिर आप संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? फिर आप कहते रहो कि अहम ब्रह्मास्मि कैसे कहेंगे? जब आप संसार की एक वस्तु को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कार्य है आपको किसी ने बतला दिया कि ये घर मैंने आपको दे दिया, आप कहते मैं कैसे मान लू, मेरे नाम ने किया आपने, कैसे मान लू? आप कल को कहेंगे जाओ यहाँ से। आप संसार की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक आपके अनुभव में नहीं आते। तो ये जो तत्व स्वरूप की प्राप्ति है, ये हमारे को बतला रहे हैं महापुरुष, वेद बतला रहे हैं, फिर भी हम कैसे माने? हमारी संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही, सुखी हम इसलिए नहीं हो रहे कि सुख का स्वरूप तो हमने श्रवण कर लिया, लेकिन उस सुख का हमारे को कहीं दर्शन नहीं हो रहा ना। आपने सुना है कि ऐसा सुख मेरे को चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा सुख आप चाहते हैं, आपको उसके सुख के बारे में मालूम है, लेकिन जिस जहां पर आप लेना चाहते हैं वहां आपको मिलता नहीं है, इसलिए आप उस वस्तु को छोड़ देते हैं। अनुभव में नहीं आ रहा, किसी भी वस्तु को आपने पकड़ा तो उसमें से आप ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी जाए ना, लेकिन उसमें ऐसा है नहीं। थोड़े दिन के लिए वो चीज आपको सुख देती है, बाद में दुख देती है, आपको छोड़ देते हैं। इसका मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, मालूम नहीं है सुख आप वही चाहते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है, घटता नहीं आपके जीवन में। तो जब हमने ईश्वर दृष्टि बनानी है तो ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। उस दिन बतलाया था कि पांच अंश हैं हरेक पदार्थ में, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। तो जो हमारे को दिखाई पड़ रहा है ना सामने, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये किससे हो रहा है? ज्ञान हमारे को किसके द्वारा हो रहा है? इंद्रियों से। रूप का दर्शन हम किससे करते हैं? आंखों से। तो आंखों का धर्म है ना, ये आंखों का विषय है रूप। आंखें भी किसी से बनी है ना, आंखों का कोई कारण है ना, ये आंखें किसी का कार्य है कि नहीं? सूक्ष्म विचार करेंगे तब पता चलेगा। भाव आंखें जो है देखती है रूप को, हमारे को रूप दिखाई पड़ता है, और क्या है रूप और नाम, नाम में हमारे को सुनाई पड़ रहा किसी का बोल देते हैं नाम, तो कानों से नाम सुनाई पड़ता है, आंखों से रूप दिखाई पड़ता है। संसार में जब हमने पहले चिंतन कर लिया भी अस्थि भाति प्रिय तो हमारे को कहीं मिल नहीं रहा, जो हमारे को मिल रहा है ये क्या है? नाम और रूप। नाम और रूप जो है ये किसका अंश है? ईश्वर का स्वरूप तो नहीं है। ईश्वर आप कहते हैं कि अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, ना ही उसका कोई रूप है, निराकार है ना वो। ईश्वर परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ना ही उसका कोई नाम है, संज्ञा से रहित है। तो ये जो हमारे को दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? नाम और रूप है। इसका मतलब ये ईश्वर नहीं है। तो कैसे ईश्वर दृष्टि बनेगी, ईश्वर दर्शन कैसे होंगे? इस संसार के नाम और रूप का त्याग करेंगे, ईशावासी मदम सर्वम, उसमें से यही सिद्धांत निकला कि नाम रूप की आसक्ति छोड़ दो, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर से व्याप्त जब कहने का मतलब है, व्याप्त का मतलब ये मैंने बतलाया था कि जैसे कोई कहे हथियार को लोहे से ढक दो, आभूषण को सोने से ढक दो, घड़े को मिट्टी से ढक दो, तो क्या मतलब हुआ उसका? घड़ा तो पहले मिट्टी है, उसको मिट्टी से कैसे ढकेंगे? कि उसको जान लो कि ये मिट्टी ही है, यही उसका ढकना है। उसके यथार्थ स्वरूप को जानना ही उसका मिट्टी से ढकना है। हथियार स्वयं गुहा ही है, उसको ऐसा जानना कि ये हथियार, जैसे मैंने कृपाण है, तीर है, ये जो मेरे दिमाग में बैठा है ये गलत है, ये लोहा ही है। कृपाण तीर कोई वस्तु नहीं है, वो तो वाणी का विकार है। घड़ा घड़ा है, किशोरा है, सुराही है, ये जो शब्दों का अर्थ है ये नहीं है, ये तो मिट्टी है। तो ये जो नाम और रूप आपको दिखाई पड़ रहा है ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप नहीं है, ये तो माया का कार्य है, बदलता रहता है। ईश्वर का स्वरूप होता तो बदलता नहीं, कभी भी बदल रहा है हमारे देखते हुए। तो इसलिए कहते हैं ईशावासी मदन सर्वम का है कि इसके नाम और रूप की आसक्ति छोड़ के इसको ईश्वर मानो। और संसार में नाम और रूप आप छोड़ना कहाँ चाहते हैं? हम कहते हैं नाम रूप छोड़ गया तो बचा क्या, हमारा तो कुछ बचेगा नहीं, हमारा तो नाश हो जाएगा, कहाँ छोड़ना चाहते हैं? कभी भी हम अपने नाम को बदलना भी नहीं चाहते और किसी से गलत सुनना भी नहीं चाहते। नाम हमारा कभी भी कोई गलत ले जा, हम नाम को छोड़ना चाहते हैं कभी? मानो कहीं हम गए, एक बहुत सूक्ष्म बात है, आपने कहीं सेवा की गुरुद्वारे में मंदिर में, तो आप पत्थर पे नाम लिखाते हैं? कौन लिखाता है नाम? जिसकी नाम में आसक्ति है वो लिखाएगा, दूसरा थोड़ी लिखाएगा। ये नाम का त्याग है क्या कि हमारा पत्थर लगा दो कि हमने ये कमरा बनाया, कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा नाम लें, मैंने बनाया था, तो कैसे ईश्वर का दर्शन करेंगे? नाम और रूप में हमारी इतनी आसक्ति के हम लिखा रहे हैं पत्र में, हमारे को अवधि भी नहीं हमारी कि कितने दिन हम हैं, तब भी लिखा रहे हैं। इसका मतलब नाम में आसक्ति है, नाम रूप में हमारी आसक्ति है। तो ये नाम और रूप की आसक्ति को छोड़ करके बाकी जो बचता है वो क्या है? अस्थि भाति प्रिय, वो क्या है? वो है ईश्वर, वो है ब्रह्म। शंकराचार्य महाराज जी जब इस श्रुति का भाष्य करते हैं ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो उन्होंने भाष्य में ये लिखा है कि ये संसार नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्म है, नाम रूप के सहित ब्रह्म नहीं है। नाम और रूप बदल जाएगा तो ब्रह्म का लक्षण नहीं घटेगा, अव्याप्ति हो जाएगी, दोष लग जाएगा। नाम और रूप का जो हमारा दृष्टि बनी हुई, नाम और रूप ही दिखाई पड़ता दोनों ना, अस्थि भाति प्रिय तो दिखाई नहीं पड़ता। नाम और रूप की आसक्ति जब छोड़ देंगे तब हमारे को सच्चित आनंद स्वरूप जो ईश्वर है उसका ऐसे संसार में दर्शन होगा। तो जब ऐसी हमारी दृष्टि बनेगी, फिर कहते हैं जब ऐसी दृष्टि किसी की बन जाती है ना, कोई भाग्यवान होगा, तो फिर उसकी उसके जीवन की उसकी निशानी उसकी अवस्था बतलाते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता, तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो फिर भोग में त्याग आता है। भोग किसका कर रहा था? नाम और रूप का। नाम रूप उसने जोड़ दिया, भोग किसका करेगा? भोग में त्याग हो जाएगा क्या? भोग तो नाम और रूप का ही करता है, और किसका करता है? सारा संसार कहाँ सक्त हो रहा है? रूप में और नाम में, तो इसी का हम भोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब वो नाम और रूप की आसक्ति छोड़ देगा तो इसका मतलब ये तो नहीं वो खाना पीना छोड़ देगा, रहेगा तो यही ना, फिर भोग में त्याग आ जाएगा, भाव जीवन को निर्वाह मात्र खाएगा, खाने के लिए नहीं जिएगा ना, जीने के लिए खाएगा। वो कहेगा केवल पेट में कोई चीज डालनी है, कोई चीज डालनी है मुझे भर दे, खाली है ना तो डाल देगा कुछ भर जाएगा। वो कहता, एक बार किसी ने पूछा, महात्मा कोई सोए थे तो काफी देर में उठे, तो कहते महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहते गधे को नहलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज गधा आपके पास कहाँ, आपके पास गधा कहाँ से आया? कहते यही गधा है, इसको नहलाने जा रहे हैं। वो थोड़ी ना आ रहे हैं, शरीर को नहलाने जा रहे हैं। वो कहते इसको नहलाने जा रहे हैं। कहते महाराज हमने तो आज सुना। कहते भाई गधे का काम क्या होता है? गधे में हम कोई चीज लाद लाद के उससे काम लेते हैं ना, इससे काम ले रहे हैं। गधा ही तो है हमारा सवारी, कहने का मतलब असवारी है हमारी, इसके ऊपर हम सवार होकर के इससे काम ले रहे हैं, चल रहे हैं।
तो ऐसी दृष्टि बनती है तभी है ना कि उससे अलग होकर के उसको हम मानते हैं। तो उनमें भोग में त्याग आ जाता है, फिर वो भोग में त्याग का मतलब जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतने उनके पास रहता है। अगर लालच नहीं करते हैं ना, भोग में त्याग का मतलब है कि जितनी आवश्यकता उनके जीवन में है उतने से संतुष्ट हो जाएंगे, दूसरे के ऊपर दूसरे का नहीं छीनेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और जब भोग में त्याग आ जाता है तब क्या होता है, अर्थ में निर्लोभता, धन में निर्लोभता आ जाती है। धन का लोभ तभी करेंगे जब भोग में आसक्ति होगी, जब भोग में त्याग आ गया तो अर्थ का निर्लोभ अपने आप हो जाएगा। ये तीन बातें पहले मंत्र में दृढ़ करवाई थी, लेकिन सबका मुख्य है कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन। ये तीन पद जहां पुरुषार्थों का हमारे को उपदेश दिया पहले मंत्र में, और दूसरे में फिर कहा कि कुर्वन्ते वेह कर्माणि, आप 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करो, कर्म ही करते हुए इच्छा करो। वहां पर बोला कि जब आपके जीवन में तीन चीजें आ जाएगी ना तो फिर आप कर्म तो करेंगे, कर्म छोड़ना भी नहीं है, ये भी बात नहीं है। कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, कोई कहेगा जब हमारे धन नहीं, हमारे को धन का लोभ नहीं रहा, जब हमारे की भोग में शक्ति नहीं रही, सब जगह हमारे को ईश्वर दर्शन हो रहा तो फिर हम काम कुछ दिए करेंगे, प्रश्न हो जाता है। तो कहते हैं काम करते हुए ही, क्योंकि बिना काम के जैसे भगवान कहते हैं कि एक क्षण भी आपका बीतता नहीं है, एक क्षण भी कोई मनुष्य बिना काम के नहीं रह सकता, कोई कार्य करेगा जरूर, जीवन यात्रा भी नहीं चलती। तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, उसका मतलब ये है कि कर्म नहीं छोड़ना है। लेकिन कर्म करना कैसे है, कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, तो फिर कहते हैं विहित कर्म करना है, निषिद्ध कर्म नहीं करना। और कर्म करना है क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन फल की शक्ति तो आपकी समाप्त हो गई। पहले आप धन के लिए करते थे, भोग के लिए करते थे कर्म, लेकिन वो दोनों चीजें जब किसी की समाप्त होगी तो कर्म कैसे करेगा वो, कर्म तो करेगा लेकिन आसक्ति नहीं रहेगी ना फल की, तो जब वो कर्तृत्व भोगृत्व उसका समाप्त हो जाएगा। कर्तृत्व जब रहता है तो भोगृत्व रहता है उसको, फिर जन्म मरण उसका चलता रहता है। तो अनासक्त होकर के सर्वत्र ईश्वर दर्शन करके भोग में त्याग, अर्थ में निर्लोभता, तो फिर कहते हैं जब आप कर्म करोगे तो ना कर्म लिप्यते नरे, फिर आपको कर्म जो है आबद्ध नहीं करेगा, बांधेगा नहीं। कर्म करते जाइए, आपको उसका फल जो है बांधेगा नहीं, ये बात है। और तीसरा जो श्लोक हमारे को आरंभ करना था, अभी कल भी नहीं हुआ आज भी नहीं हुआ, उसमें अज्ञानियों की निंदा की है, अविद्वानों की निंदा की है, असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ये है तीसरा श्लोक कि जो असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता कौन तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनः जनाः, जो आत्मघाती लोग हैं उनकी बात है इसमें, जो आत्मा का हरण करने वाले, आत्मघाती आत्मा का हरण करने वाले वो, उनकी इसमें हालत बतलाई गई जीते हुए और मरने के बाद, दोनों बतलाई है कि जीते जी उनकी क्या हालत होती है, मरने के बाद क्या होती है, इसको कल को विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय।